समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। रचनात्मक काम मौलिक, नवीन और कल्पनाशील विचारों को हकीकत में बदल देता है। ये केवल कला या पेंटिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समस्या समाधान, लेखन और दैनिक कार्यों को नए दृष्टिकोण से करने की क्षमता का परिचायक है। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
नमस्कार मनोज एंड टू आवर लिसनर्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। वेल यस, दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। वेल टुडे विद मी शगुन चोपड़ा एंड मनोज, एंड वी आर वेरी थ्रिल्ड एंड पम्प्ड अप टू बिगिन आवर प्रोग्राम। वेल, इट इज अ ब्लेंड ऑफ म्यूजिक। वेल, वी विल ऑल्सो शेयर विद यू द लेटेस्ट नेशनल इंटरनेशनल news, and today it's verdict day, so brace yourselves. Well, counting of votes begins today, and also we have metro city updates, and today we'll also discuss some historical information about this day. Today it's 4th of May. Also, there is something special about this day which we will tell you in the history section of the program. First, Manoj, let's begin with the headlines.
Ji.
So all arrangements are in place for counting of votes today for the assembly elections in Assam, West Bengal, Kerala, Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry. The counting will begin at 8 this morning, which is in about roughly half an hour it will begin. And the counting of postal ballots will be taken up first, and then counting of electronic voting machines will start at 8:30 a.m. So shortly it will start. Early trends are expected to emerge by noon. Election Commission has put in place robust security arrangements for smooth counting in 4 states and 1 Union Territory. And counting of votes will be taken up for 126 assembly seats in Assam, 140 in Kerala, 234 in Tamil Nadu and 30 seats in Puducherry. In West Bengal, counting of votes will be taken up for 293 seats today. So the re-poll for the Falta Assembly constituency will be held on 21st May and the counting will be held on 24th of May. Tamil Nadu recorded a historic and peaceful polling in all the 234 constituencies spread across all the 38 districts. Our correspondent has filed a report. Listen in.
Today is the day to know the choice of the voters for 234 constituencies. It is also a day to find out whether the prediction of the exit polls as projected by various agencies, TV channels and individuals are true. As people are likely to gather around counting centers, state and paramilitary personnel have been posted outside the centers to strengthen security and divert traffic accordingly. The counting will begin with postal ballots and then the EVMs. With Sushil Tiwari, Joy, reporting for Akashwani from Chennai.
Janadesh 2026.
Special program on results of assembly elections in Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Puducherry.
Today, the 4th of May 2026.
Our correspondents on the ground will bring the latest developments for you.
For in-depth analysis by the experts and latest update of vote counting.
Tune into Akashwani Gold along with additional frequencies.
From 8:30 a.m. onwards today.
Janadesh 2026.
नागालैंड में मोकोकचुंग जिले के कोरीडांग विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए आज मतगणना होगी। इसके लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। मतगणना उपायुक्त कार्यालय में 3 चरणों में की जाएगी। भाजपा के मौजूदा विधायक इमकोंग एल इमचेन के निधन के कारण हुए उपचुनाव में 9 अप्रैल को 82.21% मतदान हुआ। इस सीट के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं।
Results for the Baramati and Rahuri Assembly bypolls in Maharashtra will also be declared today. The Baramati bypoll was necessitated by the death of former Deputy Chief Minister and NCP leader Ajit Pawar in an air crash on 28th of January. His wife and current Deputy Chief Minister Sunetra Pawar is contesting the seat. In Gujarat, the counting of votes of the Umret Assembly bypoll in Anand district is being held today at a college in Vallabh Vidyanagar amid tight security. So this bypoll was necessitated after the death of BJP MLA Govind Parmar.
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक प्रमुख मार्ग रहा है और इस मार्ग से यात्रा दशकों से जारी है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा के संदर्भ में नेपाल के विदेश मंत्रालय की टिप्पणियों के संबंध में मीडिया के प्रश्नों का जवाब दिया. नेपाल के क्षेत्रीय दावों के संबंध में उन्होंने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि ऐसे दावे न तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित हैं. विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत द्विपक्षीय संबंधों के सभी मुद्दों पर नेपाल के साथ बातचीत के लिए तत्पर है. इससे पहले नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि नेपाल सरकार इस तथ्य पर पूरी तरह से स्पष्ट और दृढ़ है कि महाकाली नदी के पूर्व में स्थित लिम्पिया धुरा लिपुलेख और कालापानी 1816 की सुगौली संधि के बाद से नेपाल के अभिन्न अंग है. नेपाल ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के संबंध में राजनयिक चैनलों के माध्यम से भारत और चीन को अपनी चिंता से अवगत कराया है.
Now we'll tell you about the successful launch of Mission Drishti satellite. So Indian space startup GalaxEye has launched Mission Drishti, world's first OptoSAR satellite aboard SpaceX's Falcon 9 rocket from California in United States. This weighs around 190 kilogram. Mission Drishti is the largest Earth observation satellite ever built by a private Indian company. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi lauded this successful launch of Mission Drishti satellite, highlighting it as a major milestone in India's space and innovation journey.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे. रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी. 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है.
The United States and Iran appear no closer to a breakthrough as Washington pushes back on key elements of Tehran's proposed roadmap to end the conflict, even as a fragile ceasefire remains under pressure across West Asia. Iran's government spokesperson Ismail Baqai said the United States has responded to Tehran's 14-point plan aimed at ending the war, adding that the response is currently under review. U.S. President Donald Trump, speaking to Israeli media, he said that he had examined the proposal and described it as not acceptable. He said Iran has not yet paid a big enough price, signaling Washington's tougher stance as talks remain indirect and mediated.
होर्मुज की खाड़ी में फंसे जहाजों के लिए अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ और असंबद्ध देश प्रभावित हुए हैं और अमरीका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकलने में सहयोग करेगा. अमरीकी सेंट्रल कमान के अनुसार इसके लिए मिसाइल नाशकों, 100 से अधिक विमानों और 15,000 कर्मियों की सेवाएं ली जाएंगी. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा. फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने होर्मुज की खाड़ी से जहाजों की आवाजाही को लगभग बंद कर रखा है. उधर अमरीका ने भी ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी है.
Providing you weather updates now, the India Meteorological Department has forecast thunderstorms accompanied with hailstorm over Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh and Uttarakhand for today. Similar weather conditions are also likely to prevail over parts of Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Odisha.
IPL क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। अहमदाबाद में पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 163 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस ने एक गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। जेसन होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब रुख करते हैं महानगरों के समाचारों का।
वेल, वी आर बिगिनिंग विद चेन्नई, मनोज
जी।
सो चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड राइडरशिप ड्रॉप टू अराउंड 3 लाख इन अप्रैल। So that's why the CMRL, Chennai Metro Rail Limited, said that 90.18 lakh passengers travelled in metro trains last month. And in March, around 1 crore people travelled, averaging 3.22 lakh daily. Last month's peak daily ridership of 3.65 lakh, it was recorded on April 2 and ahead of an extended weekend. To attract more footfall, the Chennai Metro Rail Limited has pushed event-based travel initiatives such as free rides for IPL 2026 matches and other events, which includes marathons.
अब दिल्ली की खबर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी की हरियाली ही इसकी जीवन रेखा है और इसकी सुरक्षा सभी की साझा जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश के माध्यम से उन्होंने शहरवासियों से कहा कि यदि कहीं अवैध रूप से पेड़ कटते हुए दिखाई दें तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1800118600 पर सूचना दें। मुख्यमंत्री ने इस दौरान हमारी दिल्ली हमारी जिम्मेदारी का नारा देते हुए नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। दिल्ली की एक और खबर। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक बैंक अधिकारी भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने फर्जी ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से हाई रिटर्न का लालच देकर 45 लाख से अधिक रुपए की ठगी की है। इस मामले में आगे की जांच जारी है।
Now we'll head to Bengaluru. The leader of the opposition in Karnataka Legislative Assembly, R. Ashok, has condemned youth for scripting history at Swaraj Dweep in the Andaman and Nicobar Islands by unfurling the national tricolour deep beneath the sea. Has commended youths for scripting history at Swaraj Dweep in the Andaman and Nicobar Islands. So he has expressed pride at his son Sharat R. Ashok being part of the patriotic adventure. R. Ashok has also congratulated his teammates trained in scuba diving for earning a place in the Guinness World Records in this underwater mission. The record made on May 2nd, it saw participation of over 200 skilled scuba divers from across the country, and this feat achieved with support of Andaman and Nicobar administration as well as Indian Defence Forces involved unfurling a massive 60-into-40-meter national flag beneath the sea against all odds posed by strong currents and water pressure. So Sharat has considered this as a moment of immense pride in his life, and he has said that his experience in adventure sports and wildlife conservation, it inspired him to be part of a meaningful national effort.
अब महाराष्ट्र मुंबई की खबर। वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार और शिक्षाविद अभय मोकाशी का अपने 69वें जन्मदिन से एक दिन पहले शनिवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। श्री मोकाशी का पत्रकारिता में लंबा करियर रहा। उन्होंने मिडडे में राजनीतिक संपादक और बाद में द फ्री प्रेस जर्नल में स्तंभकार के रूप में कार्य किया। वे पत्रकारिता के शिक्षक के रूप में भी जाने जाते थे। वे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर से जुड़े अंकों में हेरफेर के मामले में अपने खुलासे के लिए प्रसिद्ध थे, जिस कारण मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। मुंबई की एक और खबर। महाराष्ट्र पुलिस ने कल्याण में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और लगभग 2,80,000 रुपए मूल्य के चोरी के दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। सूचना के आधार पर बाजार पेट पुलिस स्टेशन की एक टीम ने 28 अप्रैल को कल्याण पश्चिम में एक आरोपी को चोरी के स्कूटर के साथ पकड़ा, जिसके बाद 3 अन्य को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कल्याण के विभिन्न हिस्सों से वाहन चोरी करने की बात कबूल की।
Now we'll focus on Hyderabad. The first batch of Hajj pilgrims departed from Hyderabad on their sacred journey to Saudi Arabia. Minister for Minorities Welfare, Muhammad Azharuddin, ceremonially flagged off the pilgrims from Hajj House in Nampally. A total of 430 pilgrims left in the first flight, marking the start of Hajj operations from Hyderabad. Minister Azharuddin advised the pilgrims to dedicate themselves to prayers and worship during their pilgrimage. He urged them to follow all rules and regulations in Saudi Arabia and pray for Telangana's development. The minister said the Telangana government is committed to providing the best facilities and support for Hajj pilgrims.
अब महानगरों के मौसम का हाल जानते हैं. पहले दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की खबर. दिल्ली में आज गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. यहां का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. मुंबई में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है. यहां का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में आज तेज हवाओं के साथ बारिश या गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है. न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं शगुन से.
Well, Manoj, it's much the same in other cities as well. Well, moderate rain, thunderstorm, thunder lightning. So Chennai first is expected to have partly cloudy sky and, as I told you, possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature will be around 29 degrees Celsius and maximum will be around 36 degrees Celsius in Chennai. Bengaluru is expected to have thunderstorm with rain. The minimum temperature will be around 23 degrees Celsius and maximum will be around 35 degrees. Hyderabad, again, partly cloudy sky and there is a possibility of development of thunder lightning. The temperature will be around, minimum temperature will be around 26 degrees Celsius and maximum temperature in Hyderabad will be around 41 degrees Celsius. Manoj.
और श्रोताओं, आज एक महत्वपूर्ण दिवस है, इसकी जानकारी दे रही है शगुन.
Well, yes, Manoj, it is International Firefighters Day. And this day honors firefighters for their service internationally and remembers firefighters who lost their lives during service and to commemorate the firefighters killed in the September 11 attacks. So firefighters, they dedicate their lives to the protection of life and property. And sometimes, listeners, that dedication is in the form of countless hours volunteered over many years. In others, it is many selfless years working in the industry. So in all these cases, it risks the ultimate sacrifice of a firefighter's life. So this is observed on May 4th every year. It is a time where the world's community can recognize and can thereby honor the sacrifices that the firefighters make to ensure that their communities and environment are as safe as possible. And this day, it is also a day in which current and past firefighters, they can be thanked for their contributions as well.
Jee. और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का. आज 4 मई है. देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है.
सो वील टेक आर लिसनर्स मनोज वे बैक इन टाइम, स्टार्टिंग विद द ईयर 1540, वेनिस एंड टर्की साइन ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. In 1814, King Ferdinand VII of Spain signed the decree of the 4th of May, returning Spain to absolutism. In 1904 now, United States began construction of the Panama Canal. In 1924, Manoj, German Republic election was held where fascists and communists, they won. In 1925, the year saw League of Nations conference on arms control and poison gas usage. In 1927, first balloon flight over 14,000 feet, it took place at Scott Field, Illinois. In 1927, again this year only, Nicaragua agreed to a U.S. supervised presidential election in 1928. Now, in the year 1979, Margaret Thatcher became the first woman to be elected as Prime Minister of the United Kingdom.
Ji, 1994 mein aaj hi ke din Kahira mein Israel aur Palestinian netaon dwara Palestinian swayattata se sambandhit aitihasik samjhote par hastakshar kiye gaye. 1999 mein aaj hi ke din bhoomigat barudi surangon ke nirman par pratibandh lagane ke liye Ottawa sandhi ke sabhi hastaksharkarta deshon ki pehli बैठक मापुतो मोजाम्बिक में शुरू हुई. 2003 में आज ही के दिन मैक्सिको की अन्ना गुएवेरा ने 35.30 सेकंड का समय लेकर ग्रां प्री की 300 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया. 2007 में आज ही के दिन बैंकॉक में ग्लोबल वार्मिंग पर बैठक संपन्न हुई. 2008 में आज ही के दिन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सेल ने भारतीय इस्पात गठबंधन से अपने को अलग किया.
In 2022, U.S. Federal Reserve made largest interest rate increase since 2000, which was plus 0.5%, and attempting to combat the fastest rate of inflation in four decades. Manoj.
जी, और अब याद कर लेते हैं उन महान विभूतियों को जिनका आज जन्मदिन जयंती या पुण्यतिथि है.
Well, yes, first, let us tell you about Edith Nesbit, the writer and poet, published her books for children and others as well. She wrote or collaborated on more than 60 such books. She was also a political activist and co-founder of the Fabian Society. This is a socialist organization which was later affiliated to the Labour Party. So the greatest wish of Edith Nesbit was to be remembered as a poet. But her poetry, like much of her adult fiction, is long forgotten. She came to write children's stories in later life and was a responsible she was actually responsible for a string of enduring titles, the most notable being The Railway Children. She has been described as the first modern writer for children, although Wordsworth readers have also been introduced to her talents as a writer of supernatural fiction. I was telling you about Edith Nesbit.
आज पुण्यतिथि है टीपू सुल्तान की. उनका जन्म 20 नवंबर 1750 को देवनहल्ली कोलार जिला कर्नाटक में हुआ था. टीपू को अपनी वीरता के कारण ही शेरे मैसूर का खिताब अपने पिता से प्राप्त हुआ था. टीपू द्वारा कई युद्धों में हारने के बाद मराठों और निजाम ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी. ऐसी स्थिति में टीपू ने भी अंग्रेजों से संधि का प्रस्ताव किया, और चूंकि अंग्रेजों को भी टीपू की शक्ति का एहसास हो चुका था, इसलिए छिपे मन से वे भी संधि चाहते थे. दोनों पक्षों में वार्ता मार्च 1784 में हुई, और इसी के फलस्वरूप मंगलौर की संधि संपन्न हुई. कई बार अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देने वाले टीपू सुल्तान को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने विश्व का सबसे पहला रॉकेट आविष्कारक बताया था.
How great. Well, now let us tell you about a musician, a blues singer and harmonica player, Paul Butterfield. Well, he's mostly associated with the Paul Butterfield Blues Band, which was inducted into the Blues Hall of Fame. He created a blues style that was uniquely his own, preferring single notes as opposed to chords and playing his harmonica. You're listening to his track, Driftin' Blues.
आज पुण्यतिथि है पंडित किशन महाराज की. उनका जन्म 3 सितंबर 1923 को काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था. वे भारत के सुप्रसिद्ध तबला वादक थे. वे बनारस घराने के वादक थे. उन्हें कला क्षेत्र में योगदान के लिए सन 1973 में पद्मश्री और सन 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था. किशन महाराज तबले के उस्ताद होने के साथ साथ मूर्तिकार, चित्रकार, वीर रस के कवि और ज्योतिष के मर्मज्ञ भी थे. आइए सुनते हैं उनके तबले को.
जब कोई अच्छे गुरु से शिक्षा प्राप्त करता है तो तबले को भी जुबान हो जाती है. देखिए, एक एक शब्द तबला कहता है कि नहीं, हम मुंह से बोल के इस पर निकाल के दिखला रहे हैं. आप देखें, गणा नाम, गणा नाम, गणपति, गणेश, लंबोदर, सोह, भुजाचार, एकदंत, चंद्रमा, ललाट, राजे ब्रह्मा विष्णु महेश तालदय वीरपद गावे अति विचित्र.
Fabulous. Well, yes, we're telling you about Pandit Kishan Maharaj, the legendary Indian tabla maestro, and he belonged to the Banaras Gharana of Hindustani classical music, being a central figure of Banaras Gharana. And we know him for his robust and open sound on the tabla, which we could rightly hear as well. And we also know him for his majestic stage presence and powerful playing style. And this, he's also celebrated for his ability to play a wide variety, Manoj, of rhythmic patterns with unparalleled clarity and speed.
जी, आज जन्मदिन है अनंग देसाई का. उनका जन्म 4 मई 1953 को अहमदाबाद में हुआ है. वे एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता है. देसाई 100 से अधिक टेलीविजन शो और 70 फिल्मों में दिखाई दिए हैं और टेलीविजन श्रृंखला खिचड़ी और उसी नाम की फिल्म में बाबूजी के किरदार के लिए जाने जाते हैं. वे नई दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व छात्र हैं और संस्थान के पेशेवर नाट्य मंडली का हिस्सा थे, जहां उन्होंने टेलीविजन और फिल्म जगत में अपना करियर शुरू करने से पहले हिंदी थिएटर के लिए कई नाटकों में अभिनय किया. उनकी मुख्य फिल्में गांधी, परिंदा, नई दिल्ली टाइम्स, परिणति, आशिकी, सर, दिलवाले आदि हैं. आइए सुनते हैं उनके साक्षात्कार का कुछ अंश.
मैंने जो 3 साल ट्रेनिंग के बिताए एनएसडी में, बहुत कुछ सीखा मैंने. आपकी पूरी बॉडी के बारे में आपको जानने को मिलता है, आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है, साथ साथ रियाज भी होता रहता है. आप जो प्रोग्राम्स थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस करते रहते हैं, 2-4 सिग्निफिकेंट प्लेज मैंने जो रेपर्टरी में किए. सबसे पहला मेरा इम्पोर्टेंट प्ले था मुख्यमंत्री करके, जो बहुत पॉपुलर हुआ था. मेरा रोल भी उसमें काफी इम्पोर्टेंट था. और दूसरा एक महाबोझ करके प्ले था, बेगम का तकिया, तुगलक, विरासत, ये 5 मेरा कई प्लेस है जिसमें अच्छे अच्छे रोल्स मुझे मिले.
आज जन्मदिन है त्रिशा कृष्णन का. उनका जन्म 4 मई 1983 को मद्रास में हुआ है. वे एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से तमिल और तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती हैं. भारत की सबसे अधिक फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक, त्रिशा ने तमिल सिनेमा में 2 दशकों से अधिक समय तक एक सफल मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपना करियर बनाया है. उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 5 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ, 1 तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड और 1 नंदी अवार्ड शामिल है. तमिल रोमांटिक ड्रामा फिल्म जोड़ी में एक छोटी सहायक भूमिका से पदार्पण करने के बाद त्रिशा ने फिल्म मौनम पेसियाधे में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई. त्रिशा ने हिंदी सिनेमा में फिल्म खट्टा मीठा, कन्नड़ सिनेमा में पावर और मलयालम सिनेमा में हे जूड से डेब्यू किया.
Now let me tell you about another actress today. It's her birth anniversary, Audrey Hepburn. Recognized as film and fashion star, she was inducted into the International Best Dressed Hall of Fame and one of only a few entertainers who have won competitive Academy, Emmy, Grammy and Tony Awards. We'll listen now to her dialogue.
Oh, but Paris isn't for changing planes, it's for changing your outlook. For throwing open the windows and letting in la vie en rose.
आज जन्मदिन है उर्मिला कोठारे का. उनका जन्म नाम कनेतकर है. उनका जन्म 4 मई 1986 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ है. वे एक भारतीय अभिनेत्री और नर्तकी हैं जो मुख्य रूप से मराठी फिल्मों, टेलीविजन और थिएटर में काम करती हैं. आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का संवाद.
माझ्या लग्नाची बोलणी करायला लोक आलेत घरी, पण मी पळून आले. आता बाबा शोधत असतील मला. जिनावरून खाली उतरत होते ना, तेव्हा सुलभा काकीनी पाहिलं. मोन्या दादा मागणं धावत होता, पण मी नाही सापडले त्याच्या हाताला. आता बाबांकडे जाऊन चुगली करत असेल.
दरवेळेला तू असंच करते ना, मला भीती वाटते गो.
द्यायचं काय त्याच्यात?
Listeners, today it's also Jackie Jackson's birthday of the Jackson 5, well, the eldest of the Jackson 5, the Jackson brothers. As a golden oldies, we are actually wishing him a happy birthday today. And he was inducted, let me tell you, into the Rock and Roll Hall of Fame in 1997. Let's listen to one of his very upbeat tracks by Jackson 5. Listen in.
और अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यही समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। नमस्कार।